पौराणिक स्वाध्याय वेलायाम आचार्य श्रुत भक्ति काय उत्सर्ग करूंगी। शतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाण्यशीतिस्त्र्यधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्य मेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्तु भासयत्तं गणहरदेवैः गन्तियं समं प्रणमामि भक्तिजुत्तो सुदनाणमहो महिं शिरसा इच्छामि वन्ते सुदभक्तिकौ सगौ गौतस्सालोच्यौ अंगो वंग पैण्य पाहुड़य परियम सुत्त प्रमाण योग पूब गय चूलिया चेव सुतम कहायम निच कालमच्छेमी पूजेमि वंदामि नमनसामि दुख कौ कम कौ बोईलाओ सुगई गमन समाहि मरण जंगुण संपत्ति हो मज्जम अत पौराणिक स्वाध्याय वेलायम आचार्य भक्ति का उत्सर्ग करूंगी हम। श्रुत जलधि पारगीभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यः छत्तीस गुण समग्गे पंचविहाचार करण संदरिसे सिस्सानुग्रह कुशले धम्माइरिये सदा वंदे गुरुभक्ति संजमेणय तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्ठकम्भम् जम्मण मरणम न पावेन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र हूम नृता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्माभिरतास्तपोधन धनाः साधु क्रियाः साधवः शील प्रावरणा गुण प्रेरणाश्चंद्रार्कतेजोधिका मोक्षद्वारक पाठ पाठन भटाः प्रीणन्तु मां साधवः गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकाः चारित्रार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकाः इच्छामि भन्त्यायिर्यवत्तिकौ सगौ गौतस्सालोच्यौ सम्मणान् सम्मदंसन् सम्मचरित्युक्तान् पञ्चविहाचाराणम् आयिर्याणम् अयारादिसुतनाणोपदेशयाणम् उवच्छायाणम् त्रियणुगुणपालनरयाणम् सब्दसाहूणम् निच्छकालमच्छेमि पूजेमि वन्दामि नमन्सामि दुःखकौ कम्मकौ बोहिलाओ सुगै गमनु समाहि मरणं जिनगुण सम्पत्ति हो मज्जम् तिहुवर्ण तिलयम् देवम् तिहुवर्ण तिलयम् देवम् वन्दिता तिहुवर्णिन्द परिपूज्यम् वोच्छम् अनुपेहाओ भव्य जनानन्द जननीयो स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा। ये बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है और वैसे अपन सर्वार्थ सिद्धि का स्वाध्याय कर रहे हैं अभी लगभग एक हफ्ते से, पर अष्टमी चतुर्दशी अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सिद्धांत का अध्ययन वर्जित होता है, इसलिए अनुप्रेक्षा का स्वाध्याय अपन इन दिनों किया करेंगे। ये स्वामी कुमार मुनि द्वारा रचित कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ है और आचार्य शुभचंद्र स्वामी आदि पुराने विद्वानों ने और वर्तमान के भी कुछ विद्वानों ने ये माना है कि आचार्य कार्तिकेय मुनि बहुत पुराने साधु हुए हैं। इस ग्रंथ के काल के बारे में कुछ लोगों की ये भी मान्यता है कि आचार्य कुंदकुंद स्वामी से भी पहले रचित है। पांडव पुराण में तो कार्तिकेय मुनिराज को मंगलाचरण में पहले नमस्कार किया और बाद में आचार्य कुंदकुंद स्वामी को नमस्कार किया। तो ऐसे ही मतलब विद्वानों की मान्यता है। अब इसमें भी क्या होता है कि किसी विद्वान की मान्यता में अंतर भी होता है। तो कुछ विद्वानों ने यह स्वीकार किया है कि कुमार कार्तिकेय मुनि आचार्य कुंदकुंद स्वामी के भी पूर्ववर्ती हुए हैं और बड़ी सुंदर 12 अनुप्रेक्षाएं प्राकृत गाथाएं हैं। प्राकृत भाषा अपनी जन्म से परिचित भाषा है। सबसे पहली चीज जो माँ बच्चे को सिखाती है वो नमोकार महामंत्र ही प्राकृत भाषा में है। क्या सिखाती है माँ? मम्मी मम्मी बोल ऐसा सिखाती है, पापा पापा बोल, नमो अरिहंताण, ये परंपरा है। तो ये प्राकृत भाषा में रचित बड़ा सुंदर ग्रंथ है और इसमें ऐसी ऐसी गाथाएं हैं जो बिल्कुल हृदय को हिला डाले, ऐसी गाथाएं। देखिए इसका मंगलाचरण जो अपन ने भी पढ़ा था, आप लोग कुछ लोग तो जानते नहीं थे कि आज चतुर्दशी में ये क्रम बदलेगा, तो एकदम सरप्राइज में आ गए होंगे कि अरे ये क्या हो गया, मोक्ष मार्ग से नेतारम कहाँ चला गया। तो ये कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ है, इसका गुजराती अनुवाद भी यहाँ उपलब्ध है। एक प्रति उस कमरे में थी तो वो हम लेकर आए थे, तो वो ठीक है। कुल कितनी प्रतियां बता रहे थे? 10 प्रतियां कुल, अच्छी बात है। तो एक बार मंगलाचरण का अपन पाठ फिर से करते हैं। तिहुवन तिलयन देवम वंदिता तिहुवनिंद परिपूज्यम उच्छं अनुपेहाव भव्य जनानंद जननीयो। अब इसमें देखिए उच्चारण के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं आपको कि ये जो पाठ होता है आर्या छंद का, इसमें बहुत बड़ी कला अपेक्षित है। हर कोई नहीं पढ़ सकता आर्या छंद। आचार्य महाराज हमारे जो गुरुजी हैं कहते हैं कि आर्या पाठ सबके बस का नहीं होता। उसमें एक टेक्निक है, एक तकनीक है पाठ करने की, कि इसमें कहीं भी जहां लघु अक्षर आते हैं वहां आप लय के साथ पढ़ते समय आवाज को खींचेंगे नहीं। जहां अनुस्वार या गुरु अक्षर हो वहीं आपको विलंबित पाठ करना है। जैसे अभी हमने जो पाठ किया, जिनने नकल की होगी वो तो जिंदाबाद एकदम शुद्ध पाठ कर पाए, बाकी जिन्होंने अपना दिमाग लगाया होगा अकल, उनका पाठ स्खलित हुआ होगा, हो सकता है। तो तिहुवन तिलयन देवम यहां तक तो सरल है, लेकिन इसके आगे वंदिता तिहुवनिंद, ये जो अनुस्वार है वहां पर आपको आवाज विलंबित करनी है और परिपूज्यम को लंबा नहीं बोलना। नहीं तो अक्सर होता क्या है, वंदिता तिहुवनिंद परिपूज्यम, ये होता है ना पाठ, ये गलत पाठ है। तिहुवनिंद परिपूज्यम लघु को वैसा ही उच्चारित करना है एक मात्रा में, निंद ये लंबा खींचना है, फिर वोच्छम अनुपे और आखिरी में देखिए भविय जनानंद जननीयो, भविय जनानंद जननीयो जननीयो, ये गलत है। उसको भविय जनानंद जननीयो, नंद को लंबा कर दिया। आए समझ में? ये ट्रिक है, मतलब आर्या पाठ की ये तकनीक है, मतलब एक रहस्यपूर्ण तकनीक, सबको बताई नहीं जाती, लेकिन फिर भी गुरुजी ने हमें बता दी तो हमें लगा कि चलो जो भी इसमें रुचि रखने वाले हैं, पाठ शुद्ध करना चाहते हैं, उनको इसी तकनीक से पाठ करना चाहिए। अब त्रुटि मत करना, कितनी रहस्यपूर्ण तकनीक हमने आपको बता दी। अब इसमें ध्यान देना, आप जब भी कभी पाठ करना हो आप देखिएगा जब हमारे गुरुजी समय सार का पाठ करते हैं, आचार्य बताते नहीं असली में, अगर कोई सामने भी गलत पड़ जाए तो वो टोकते नहीं, लेकिन कभी जब उनको बताना होता है तब वो बता करके फुर्सत बता दिया। अब जिसको करना हो सही कर लो, और नहीं करना हो तो फिर उसके भाग्य की बात है। तो ये तरीका है उसका। आचार्य श्री जब समय सार का पाठ करते हैं, हमने बहुत सावधानी से सुना है, मतलब क्या मजाल है कि 415 या 439 गाथाएं, जयसिंह स्वामी की टीका में 439 गाथाएं और अमृतचंद स्वामी ने 415 गाथाओं पर टीका करी, तो कहीं भी स्खलन नहीं होता उनका। कैसी भी आड़ी टेढ़ी कितनी भी जटिल गाथा आ जाए, लेकिन जब वो पाठ करते हैं तो फिर उसमें एकदम मात्राओं का और फिर वो पूरा जो यति है उसका भरपूर ध्यान रख करके शुद्ध पाठ करते हैं। और चूंकि आचार्य श्री कवि हैं, इसलिए कवि लोग तो इन चीजों में मास्टर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। तो अब देखिए ध्यान से करिएगा पाठ। तिहुवर्ण तिलयन देवम वंदिता तिहुवणिंद परिपूज्यम, तिहुवणिंद परिपूज्यम वोच्छम अणुपेहाहो भव्य जनानंद जननीयो। शाबाश। देखो जैसे भक्तावर में हम शाबाशी देते थे आपको, वैसे ये जब कोई अच्छा काम सीख लो आप तो फिर शाबाशी के पात्र तो हो ही जाते हैं। अब इस गाथा का अर्थ क्या है? ये मंगलाचरण है। कुमार कार्तिकेय मुनि कह रहे हैं कि तिहुवणिंद परिपूज्यम तिहुवण तिलयम देवम वंदिता भव्य जनानंद जननीयो अनुपेहाओ वोच्छम। तिहुवण तिलयम देवम, देखिए तिहुवण इंद्र पर, त्रिभुवन के जितने इंद्र हैं, 100 इंद्र माने गए हैं। त्रिभुवन यानी तीन लोक से संबंध रखने वाले जो इंद्र हैं, उनकी कुल गिनती 100 मानी गई है। अब उसमें कौन से इंद्र आएंगे? तो एक गाथा आती है, भवनालय 40 विंतर देवाण होंती 32 कप्पामर 24 चंदो सूरो नरो तिरियो। अब इसमें नरक गति के कोई इंद्र नहीं होते, क्योंकि नरक में सभी इंद्र होते वो सब एक दूसरे को दादा समझते हैं और फिर मार काट मची रहती है। अलग से वहां कोई शासन नहीं होता। सर्वे पिचंड शासनाः, ज्ञानानंद ग्रंथ में कहा है कि सिर्फ तीव्र क्रोध करना ही उनका एकमात्र शासन होता है। सब एक दूसरे को मारने काटने में ही लगे रहते हैं, इसलिए वहां पर यह व्यवस्था नहीं है, पर बाकी जीवों में है। देवों में देखिए भवनालय 40 भवनव्यासी देवों में 10 भेद होते हैं। कौन से 10 भेद होते हैं? अश्वर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर कुमार, अग्नि कुमार, ऐसे करके 10 भेद होते हैं। और व्यंतरों में 8 भेद होते हैं, किन्नर, किम पुरुष, महोरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। और फिर एक सूत्र आता है तत्वार्थ ग्रंथ में, पूर्व योर द्वींद्राह, ये जो पहले के दो समूह हैं देवों के, भवनवासी और व्यंतर, इनमें ये जो भेद बताए हैं 10 भवनवासी और 8 व्यंतर, तो इनमें 2-2 इंद्र होते हैं, तो 10 के 20 इंद्र हो जाएंगे और वहां व्यंतरों में 8 के 16 इंद्र हो जाएंगे। और फिर इन इंद्रों के 4 लोकपाल होते हैं और 4 लोकपालों में एक लोकपाल प्रतींद्र पद का धारक होता है। जम्बू दीव पंडित्ति में ये बात आई है, ये बात बड़ी रहस्यपूर्ण, मतलब सर्व प्रचलित नहीं है कि ये प्रतींद्र कौन है, क्या वस्तु है प्रतींद्र। तो प्रतींद्र जो होते हैं 4 लोकपाल, सोम, वरुण, यम और कुबेर, इनमें से अब यहां के अनुमान से अपने को लगता है कि हो सकता है कुबेर ही प्रतींद्र होता हो, तो वो प्रतींद्र भी साथ में सम्मिलित कर लो, तो फिर भवनवासियों में 20 इंद्र है तो उनके एक एक प्रतींद्र साथ में जोड़ लो तो कितने हो जाएंगे कुल, भवनालय 40। अब वो 40 छंदों वाली जो 40 होती, पद्म प्रभ 40, वो अलग चीज है। यहां पर भवनालय 40 का मतलब भवनवासी से संबंध रखने वाले इंद्र प्रतींद्र कुल 40 होते हैं, 20 इंद्र, लोकपाल 4 होते ना, तो उसमें एक प्रतींद्र होता है, ये जम्बूदेव पंडित्ती में लिखा है। अच्छा सुंदर ग्रंथ है, कर्णानुयोग का ग्रंथ है जम्बूदेव पंडित्ती, उसमें इसका उल्लेख मिलता है। और 4 लोकपालों के नाम तो प्रसिद्ध है, सोम, वरुण, यम और कुबेर। तो इनमें हो सकता है कि कुबेर हो या कोई भी हो, अपन अभी इसका निर्णय अपन अपने ज्ञान से कैसे कर लें, छोटा सा ज्ञान है अपना। तो ये जो आचार्य परंपरा है या गणधर महाराज की जो जिनवाणी है या केवली भगवान द्वारा जो प्रणीत है, वही प्रामाणिक इन 4 में से एक प्रतींद्र होता है। फिर व्यंतर देवों में जैसे 8 निकाय है, तो 8 निकायों में 2-2 इंद्र होंगे तो 16 इंद्र हो गए। जैसे भवनवासी का अपन उदाहरण ले लें कि असुर कुमार देव है, तो असुर कुमारों के 2 इंद्र होते हैं, चमरेंद्र और वैरोचन। आगे चलकर सर्वार्थ सिद्धि में ये वर्णन आता है। फिर नाग कुमारों के भी 2 इंद्र हैं, धरणेन्द्र और भूतानंद, 2 इंद्र हैं। फिर ऐसे सभी के 2-2 इंद्र होते हैं, और फिर उन इंद्रों के साथ एक एक प्रतींद्र भी गिना जाता है। तो इस प्रकार भवनवासी संबंधी 40 हो जाएंगे, व्यंतरों से संबंध रखने वाले 16 और 16, 32 हो जाएंगे। भवनालय 40, विंतर देवाण होती 32, और कप्पामर 24। कल्पवासी जो देव होते हैं, अब यहाँ तो क्या होता है कि आपके समाज की जो सिस्टम है पैसा निकालने की, वो क्या बोलते हैं आप, उछामण, उच्छामण, गुजराती में उच्छामण बोलते हैं, कहीं न्योछावर बोलते हैं, श्वेतांबरों में चढ़ावा बोलते हैं, और मध्य प्रदेश और हिंदी साइडर्स लोगों में उसको बोली कहते हैं। तो ये सिस्टम वैसे शास्त्रीय विधि नहीं है। शास्त्रीय विधि तो ये है कि दाहिने हाथ से दान देते हो तो बाएं हाथ को पता ना चले कितना डाल दिया आपने उसमें। और यहां तो जब तक सीढ़ियों पर नाम ना लिखा जाए तब तक दान पूरा नहीं होता, वो रकम आती नहीं। तो क्या होता है कि जब कभी कोई विधान होता है तो फिर वैसे तो इंद्र 100 है, लेकिन उस विधान में फिर कोई सीमा नहीं रहती इंद्रों की, वो 1008 भी बन जाए या और अधिक भी बन जाए। हाँ चंद्र सूर्य अगर आप अधिक बनाना चाहो तो बना सकते हैं जितना चाहो, क्योंकि पूरे मध्य लोक में चंद्र और सूर्य की बहुत लंबी गिनती होती है। अकेले जम्बूद्वीप संबंधी 2 सूर्य और 2 चंद्र होते हैं, फिर आगे लवण समुद्र संबंधी उससे डबल, फिर उससे डबल, उससे डबल, ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा गिनती हो जाती। लेकिन जो कल्पवासी देव हैं, कल्प कितने हैं स्वर्ग, तो दिगंबर मत के अनुसार स्वर्गों की गिनती 16 है। श्वेतांबर आमनाय के अनुसार कितने हैं, 12। श्वेतांबर मत में स्वर्गों की गिनती 12 है, माता के स्वप्नों की गिनती वहां 14 है, और दिगंबर शास्त्रों में 16 स्वप्न है, ये यहां पर बने हुए ऊपर 16 स्वप्न होते हैं। तो एक बार सौराष्ट्र में जब समयसार प्रवचन चल रहे थे तो उस दिन संयोग से दीपावली का दिन आया, तो उन्होंने फिर उसका व्याख्यान कर दिया बीच में, और उस व्याख्यान में उन्होंने श्वेतांबर मत में जो महावीर स्वामी की मान्यता है उसके अनुरूप उन्होंने प्ररूपण किया था। वो आज भी अगर आप देखना चाहें गुजराती समयसार प्रवचन, तो उसमें वो प्रसंग आपको मिल सकता है कि जहाँ पर उन्होंने ये उल्लेख किया है कि 10वें स्वर्ग से महावीर स्वामी का जीव यहाँ पर अवतरित हुआ था और माँ ने 14 स्वप्न देखे आदि आदि। मैंने 10वें स्वर्ग का उन्होंने वहां पर उल्लेख किया है। और दिगंबर जैन शास्त्रों के अनुसार महावीर स्वामी कहां से आए थे? कहां से आए थे पता है किसी को? कुछ तो किसी को तो पता होगा। 16वें स्वर्ग से। 16वां स्वर्ग अच्युत स्वर्ग है और 10वां स्वर्ग महाशुक्र है। और 16वें स्वर्ग के पुष्पोत्तर विमान से महावीर भगवान आए थे। तो ये मतभेद है दिगंबर श्वेतांबरों में। तो इंद्र तो दिगंबर मत में भी 12 है, 16 नहीं है। स्वर्ग 16 है लेकिन इंद्र 12 है। उसको याद करने का क्रम बहुत सरल है। 12 इंद्र कहाँ कहाँ पर कैसे याद करो भाई? स्वर्ग 16 है और इंद्र 12 है तो कैसे याद करना? तो शुरू के 4 स्वर्गों के 4 इंद्र है और अंत के 4 स्वर्गों के 4 इंद्र है। 8 का तो निपटारा हो गया। निपटारा का मतलब अंत नहीं हुआ, मतलब समझने में आ गया। 8 तो सौधर्म इंद्र, ईशान इंद्र, सनत कुमार स्वर्ग संबंधी इंद्र, महेंद्र स्वर्ग संबंधी इंद्र, ये 4 हो गए। अंत के 4 आनत, प्राणत, आरण और अच्युत स्वर्ग संबंधी इंद्र, ये 4 हो गए। अब बीच के क्या करोगे? कितने बाकी रह गए? स्वर्ग 8 बाकी है और इंद्र कितने बाकी है? 4। तो कैसे करोगे हिसाब? तो उसका हिसाब ये है कि वो उत्तर और दक्षिण दोनों स्वर्गों में, स्वर्ग जो होते हैं ऐसे रहते हैं, सौधर्म स्वर्ग, ईशान स्वर्ग। अब ये ऐसा समझ लो अपन, क्योंकि ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है। तो सुमेरु पर्वत अगर बीच में अपन ले लें मध्य लोक का नीचे, तो सुमेरु पर्वत की जो चोटी है उसके ऊपर दक्षिण तरफ सौधर्म स्वर्ग रहेगा और उत्तर तरफ ईशान स्वर्ग रहेगा। और इस प्रकार ऐसे दो दो स्वर्ग युगल में, पूरे 8 युगलों में 16 स्वर्ग अवस्थित है। अब इन 16 स्वर्गों में नीचे के सौधर्म ईशान स्वर्गों के 2 इंद्र हैं, फिर उसके ऊपर सनत कुमार दक्षिण में रहेगा, महेंद्र स्वर्ग उत्तर में रहेगा, तो इनके भी ऐसे 2 इंद्र हैं। इसके बाद ब्रह्म स्वर्ग दक्षिण में और ब्रह्मोत्तर उत्तर में, तो त्रिलोक मंडन हाथी और भरत के जीव कहाँ थे? इस 6ठे स्वर्ग में, ब्रह्मोत्तर स्वर्ग में जो उत्तर दिशा में। और इधर ब्रह्म स्वर्ग में सिद्धार्थ, जटायु, कृतांत वक्र आदि के जीव अभी भी हैं। रामायण महाभारत के ये पात्र हैं। जटायु नाम तो आप सबको मालूम है, उनका जीव अभी उस तरफ। और फिर हरिवंश पुराण के अनुसार बलराम जो थे श्री कृष्ण जी के बड़े भाई, उनको भी वहां पर ब्रह्म स्वर्ग में ही देव पद प्राप्त हुआ है। 100 वर्ष उन्होंने तपस्या करी, बाकी 8 बलभद्र निर्वाण को प्राप्त हो गए। और 8 में से 7 बलभद्र गजपंथ से मोक्ष गए हैं और 1 बलभद्र, 8वें बलभद्र भगवान राम मांगी तुंगी जी से, मांगी तुंगी नाम है क्षेत्र का, गए हैं तुंगी जी से, तुंगी गिरी से निर्वाण को प्राप्त हो गया। और अंतिम जो 9वें बलभद्र थे वो निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सके। बलराम की 2 गतियां होती है, देवगति या सिद्धि गति। तो अंतिम जो बलराम थे वो 5वें स्वर्ग में है, तो वो दक्षिण तरफ है। तो अब क्या होगा कि इसमें दक्षिण और उत्तर, ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर स्वर्ग में 1 इंद्र रहेंगे। फिर लांतव कापिष्ठ स्वर्ग में भी 1 इंद्र रहेंगे। हनुमान का जीव लांतव स्वर्ग से आया हुआ था अंजना के गर्भ में, और अंजना इतनी घबरा गई थी जब इतने संकट आ गए, तो फिर उनने जब अंत में गुफा में मुनिराज के दर्शन प्राप्त हुए तो थोड़ी राहत मिली। और फिर मुनिराज से पूछा कि हे मुनिवर, ये कौन सा जीव आया है मेरे गर्भ में कि मेरे ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा है? तब मुनिराज दिव्य ज्ञानी थे, उन्होंने कहा कि हे पुत्री अंजना, तुम घबराओ मत, उस जीव का कोई दोष नहीं है, तुम्हारे पूर्व कर्मों का दोष है जिसके कारण ये स्थिति बनी है। वो जीव तो चरम शरीर तद्भव मोक्षगामी महापुरुष होगा, कामदेव होगा, और विद्याधरों का शिरोमणि होगा। और खैर रामायण हनुमान के बिना तो पूरी नहीं हो सकती, हनुमान का वो स्थान है रामायण में। ऐसा जब वर्णन किया तब अंजना को लगा कि मैंने क्या किया पूर्व जन्म में। तब फिर मुनिराज ने वर्णन किया कि तुमने पूर्व जन्म में एक ऐसा गुरुतर पाप किया, इतना भयंकर पाप किया था कि जिसके कारण आज तुम्हें ये जटिल परिस्थिति प्राप्त हुई है। तुमने जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को पानी में फिकवा दिया था और उसका ये परिणाम निकला है कि आज तुम्हें 22 वर्षों तक पति ने ठुकराया और फिर अब ये लोकापवाद भी हो गया और तुम्हें घर से निकाल दिया गया। और घर से निकलने के बाद जब तुम अपने पिता के घर आई तो पिता ने तुम्हारे सब भाइयों को और स्वयं अपने पहरेदारों को भी आदेश दे दिया कि उसका प्रवेश वर्जित है। तो पिता के घर तुम्हें प्रवेश नहीं मिला, तब तुम अपने 99 भाइयों के घर गई लेकिन एक भाई ने भी दरवाजा नहीं खोला और फिर तुम यहां भटकती हुई जंगलों में आई और इस गुफा में पहुंची हो। देखो अपने को आज जो संकट प्राप्त हो रहे हैं उस संकट से तुलना करो जो गर्भवती अंजना सती को प्राप्त हुआ था, तो अपना संकट कितना है। ये बात अलग है कि पंचम काल की सहन शक्ति बहुत कम है, लेकिन फिर भी नारी पर्याय में गर्भवती अवस्था में अगर निकाल दिया जाए और भाई भी शरण न दे, पिता भी शरण न दे, तो क्या स्थिति बनती होगी, कैसी मनोदशा होती होगी। आज तो ऐसी स्थिति है कि मतलब वर्तमान युग में खान पान इतना प्रदूषित है कि एक सेकंड में व्यक्ति आत्महत्या की सोचता है और दूसरे ही क्षण मर्डर की सोचता है। मैं क्यों मरूं, उसको मार डालूंगा, यहां तक के विचार चले जाते हैं। क्षण मात्र में कहां से कहां जाते हैं विचार। उनने कैसे सहन किया होगा। और फिर वो मुनिराज इतना सब बतला करके गुफा से निकल कर चले गए और फिर हनुमान का जन्म हुआ और सारी घटना आगे चलती है। बहुत लंबी कथा है और उसको अगर विस्तार से सुना दिया जाए तो फिर आंसुओं को रोका नहीं जा सकता। पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी ने हमसे बतलाया था कि महाराज जी जिस समय मैं अनुवाद कर रहा था इसका, पद्म पुराण के 16वें और 17वें अध्याय का जहाँ अंजना सती की कथा है, उस समय मैं कानपुर में था उधर, और कानपुर में पर्युषण पर्व के समय मुझे बुलाया गया था। तो फिर सुबह और शाम को वैसे वो चलता था स्वाध्याय और 10 धर्मों के ऊपर व्याख्यान, और बाकी जो खाली समय रहता था तब मैं इसका अनुवाद करता था। और अनुवाद करते समय एक श्लोक की मैं हिंदी करता था और फिर ऐसे आंखें पोंछता था, फिर दूसरे श्लोक की हिंदी करके फिर से आंखें पोंछता था। मैंने पूरे अध्याय में आंसू थमते नहीं थे, इतनी विकट स्थिति का ऐसा चित्रण किया है पद्म पुराण में, एकदम वो सीन सामने आ जाए। इतने भयंकर कष्टों को उन्होंने सहन किया अंजना सती ने। फिर आज जो अपने जीवन में कष्ट आते हैं उनसे क्यों घबराना। और मान लो अगर मन विचलित हो रहा है तो पद्म पुराण का वो अध्याय पढ़ लो, एकदम अंतर्बल जागृत होगा, एक संबल मिलेगा कि ऐसा कष्ट तो नहीं है मेरे सामने, कुछ भी हो गया हो लेकिन इतना विकट कष्ट, इसकी कल्पना करो ना आप कि उस जंगल में वो भटक रही है कि जहां पर एक कदम रखती कांटे से बचने के लिए तो फिर बैलेंस बिगड़ जाता और पैर कांटे के ऊपर पड़ जाता और चीख निकल जाती मुख से, और जब तक उसकी सखी वसंतमाला वो कांटा निकालती है और उसको हिम्मत दे, वो बोलती है अब नहीं चला जाता, बैठ जाती है, उसकी सखी को आंसू आ जाते हैं लेकिन फिर भी वो सोचती है कि अगर मैं इसके सामने रहूंगी तो इसको बल कौन देगा, हिम्मत देती है। विद्याधरी हैं दोनों लेकिन गर्भवती होने के कारण उसको उठकर आकाश में नहीं ले जा सकती, वो पैदल चलना पड़ रहा है उनको। ऐसे प्रचंड कर्मों का उदय आ गया। अपने को भी अगर कभी कोई तीव्र कर्म का उदय आ जाए तो ये समझना चाहिए कि कभी ना कभी अपने पूर्व जन्म में देव शास्त्र गुरु से संबंधित कोई अपराध अवश्य किया होगा। क्योंकि संसार के जो सबसे तीव्रतम संकट होते हैं वो इसके सिवा नहीं होते। सीता को भी जब अकेले छुड़वा दिया जंगल में तब क्या कहा उसने? उसने सिर्फ मन में ये विचार किया कि मैंने तीन पापों में से कोई पाप किया होगा, पंच पापों में से नहीं, तीन पापों में से। कौन से तीन? या तो मैंने गुरु की निंदा की होगी, पहला पाप, कितना सबसे खतरनाक पाप है, या तो मैंने गुरु की निंदा की होगी। कभी कभी अपन गुरु को समझ नहीं पाते और उतावली कर बैठते हैं, और ये भूल बहुत खतरनाक होती है। आप आंखों से धोखा भी खा सकते हैं, दो पटरियों के बीच में खड़े हो जाओ तो लगेगा कि वहां मिल रही है सामने, और चलते जाओ हजारों किलोमीटर तक कहीं पटरी मिलने नहीं वाली। इसी प्रकार दूर से अपन निर्णय करते हैं गुरु के बारे में कुछ, तो फिर गलत निकल आता है, और गलत निकलने के कारण फिर अपनी कषाय बढ़ती, और वो कषाय मतलब गुरु पर कषाय करना, माने कल्पना करो आपकी कितना दूषित मन होगा वो।